الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम पिछले हफ्ते नींद का निज़ाम स्लीप मैनेजमेंट पढ़ना शुरू कर चुके थे। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला दुरूस उमूर खानदारी में हुस्न इंतज़ाम में से ये तीसरा दर्स है। पहला जो है वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट का था, दूसरा जो है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का था पर था, और तीसरा स्लीप मैनेजमेंट पर। तो स्लीप मैनेजमेंट की तमहीद में या उसकी इंट्रोडक्शन में जो है वो हमने आपको कुछ बातें बतानी शुरू करी थी, जिसमें अपना एक वाकया जो कि बहुत ही हाल ही में पेश आया था कि हमने रमज़ान मुबारक में लड़कों के लिए एक कयामुल लैल का प्रोग्राम प्लान किया कि भाई उसके अंदर ज़रा मिल बैठेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे और कुछ इबादतें भी कर लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह की तरफ से मामला ये हुआ कि एक रात पहले ही हमसे मिलने के लिए इंडिया के एक आलिम आए और उन्होंने अपने वालिद साहब के हालात बयान करने शुरू कर दिए कि उनका इलाज जो है वो हमने एक हॉस्पिटल में जाके करवाया और उस हॉस्पिटल से उनको बहुत इलाज में फायदा हुआ। लेकिन उस हॉस्पिटल की जो सबसे ज्यादा खास बात उन्होंने बताई वो क्या थी कि उस हॉस्पिटल वाले जो हैं वो दिन में अपने मरीजों को और मरीजों के साथ रहने वाले अटेंडेंट्स को भी सोने नहीं देते थे, दिन में सोने नहीं देते थे, जबरदस्ती जगा करके रखते थे कि भाई तुमने अब अपना यहाँ पे एडमिशन करवाया है ना, तो नाउ यू विल हैव टू फॉलो आवर रूल्स। है ना, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम अल्लाह की दुनिया में रहते हैं तो वाई डू वी हैव टू फॉलो अल्लाह रूल्स, हमें बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है ना, हम अल्लाह का रूल के रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, हम अपने रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, हालांकि रहते कहाँ पर हैं, अल्लाह की दुनिया में रहते हैं। लेकिन किसी हस्पताल में दाखिल हो जाएं तो वहां पे बड़ी खुशी से जो है वो हस्पताल के रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवा दें तो बड़ी जोर शोर से स्कूल के अपने बच्चों से कहते हैं कि तुमने बच्चा स्कूल के रूल्स फॉलो करने हैं, और फिर जो है वो कोई कहीं जॉब करने के लिए चले जाएं तो वहां पे बड़ी खुशी से जो है वो जॉब वालों के रूल्स फॉलो करते हैं। हत्ता के वो लतीफा फिर से सुना देते हैं, फिर से सुन लीजिए वो वाला लतीफा है कि जिसमें के चंद लड़कियां बैठी हुई थीं, तो एक लड़की ने कहा कि बहुत हड हराम है, बहुत कम, बहुत ही निकम्मा है और खुद कुछ नहीं करता है और सारे काम मुझसे करवाता है। तो दूसरी जो उसकी दोस्तें थीं उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया कि फौरन छोड़ दो उसको, तलाक ले लो उससे, खुला फाइल कर दो, ऐसे तो शख्स के साथ रहना ही नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैं अपने खाविंद की बात नहीं कर रही, मैं तो अपने बॉस की बात कर रही हूं। तो फौरन वो दोस्तें है ना, ऐसी दोस्तें अल्लाह बचाए ऐसी दोस्तों से, तो फौरन वो दोस्तें कहना शुरू हो गई नहीं नहीं बर्दाश्त करना पड़ता है, कैरियर की खातिर तो ये सब देखना पड़ता है, बॉस की बात तो माननी पड़ती है ना। तो दफ्तर में जाती हैं या जाते हैं तो दफ्तर के रूल्स फॉलो करने होते हैं और बिल्कुल बड़े जोक शौक से जो है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि भाई दफ्तर में आखिर को नौकरी करनी है ना, तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, राइट। लेकिन अल्लाह ही एक है, एक अल्लाह ही है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि नहीं अल्लाह के रूल्स क्यों फॉलो करें, हम अपने रूल्स क्यों नहीं फॉलो कर सकते, अपने लिहाज से अपने हिसाब से जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते। हालांकि उस अल्लाह ने ना सिर्फ हमें बनाया, हमें खिलाया, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है। वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम उसकी नेमतों को गिनना भी चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते उन नेमतों का। तो हम में से हर एक अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ है। हम में से हर एक, हम कहते हैं ना अमीर लोग वो नेमतों में डूबे हुए होंगे, गरीब को थोड़ी। नहीं, गरीब भी नेमतों में डूबा हुआ है। हम समझते हैं कि जो सेहतमंद है वो अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ होगा, बीमार कोई थोड़ी। नहीं, बीमार भी अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ है और हर एक अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ है, कंप्लीटली डूबा हुआ है। फर्क अगर कोई करना चाहे, फर्क अगर कोई अमीर गरीब में और बीमार और सेहतमंद में फर्क करना चाहे, तो सिर्फ इतना फर्क होगा कि डूबे हुए तो सारे के सारे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अमीर जो है वो जरा डेप्थ में जाके डूबा हुआ है, ठीक है ना, वो डीप डूबा हुआ है, और फकीर थोड़ा सा ऊपर की तरफ डूबा हुआ है। डूबा हुआ दोनों है, और अकलमंद और कम अकल या बेअकल, इनमें फर्क करना चाहें तो सिर्फ इतना फर्क होगा कि अकलमंद जो है, यानी जिसके पास अकल बड़ी शार्प है, तो वो अमीर से भी ज्यादा डूबा हुआ है, नीचे है वो, अमीर से भी ज्यादा नीचे है वो, डेप्थ में है। और जो बदअकल है, या मतलब जिसका के दिमाग काम नहीं करता, वो भी नेमतों में डूबा हुआ है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जरा ऊंचा ऊंचा नेमतों में डूबा हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन डूबा हुआ है अल्लाह की नेमतों में, सबसे ज्यादा कौन डूबा हुआ है, ये आप बता दें। अल्लाह की नेमतों में सबसे ज्यादा कौन डूबा हुआ है, सबसे ज्यादा। हमने दौलतमंद की बात करी कि वो तो बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, और गरीब जो है वो कम डूबा हुआ है, और अकलमंद जो है वो उससे भी ज्यादा डूबा हुआ है, और खराब अकल वाला कम डूबा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन डूबा हुआ है नेमतों में, ईमान वाला। जवाब सही नहीं, इतना इतना प्रॉपर जवाब नहीं मिलता, नहीं लगता। ईमान वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा डूबा हुआ है यहाँ इस मौके पर। बेशक आपकी बात गलत नहीं है एक्चुअली, लेकिन इस मौके पर ज्यादा मुनासिब जवाब ये होगा कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने हिदायत के असबाब खोल दिए हैं, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने दीन के उलूम को खोल दिया है, दीन की समझ के जराए को खोल दिया है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ है। अपने दीन की समझ को, उसके जराए को, उसके जो वसाइल चाहिए होते हैं, रिसोर्सेस दीन पर अमल करने के लिए, जैसे दीनी माहौल, दीनी उलमा का वाह का ताल्लुक, मशायख का ताल्लुक, अल्लाह वालों का ताल्लुक, ये सबसे ज्यादा नेमतों में डूबा हुआ है, सबसे ज्यादा नेमतों में डूबा हुआ है, ठीक है। और जिसको दीन का ये सब नहीं मिला, तो वो ऊपर थोड़ा थोड़ा डूबा हुआ है, ठीक है। तो जिसके पास जो नेमत है ना, वो अपने आप को नेमत, वो इसी बात की फिक्र में रहे कि मैंने अल्लाह की नेमतों का तो शुक्र अदा नहीं किया जैसा करना चाहिए था, ठीक है। तो हमें तो सारी जिंदगी ऐसे गुजारनी है। इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जन्नत बना के रखी है, जन्नत बना के रखी है। नेमतें तो अल्लाह की वहां पर भी होंगी, और वहां पर तो पता है कि कितना नेमतों में डूबे हुए होंगे, लेकिन वहां पर हिसाब किताब नहीं होगा, और वहां पर कोई इसकी पकड़ नहीं होगी, वहां पर इसका कोई एंड नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए है वो जन्नत। लेकिन इस दुनिया के अंदर तो जो नेमतें हैं, तो उनका तो हमने फिर हिसाब देना है ना, और उसका शुक्र अदा करना है ना, और उसके कुफराने नेमत से बचना है ना। इसी वजह से तो हम दुनिया में भेजे गए, तफरियात करने के लिए को थोड़ी भेजे गए, अपनी मर्जियां चलाने के लिए। यहाँ तो अल्लाह की मर्जी चलाने के लिए भेजे गए। तो ये जो स्लीप मैनेजमेंट है, ये हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। हाँ, तो वो बात हो रही थी कि बच्चों का प्रोग्राम रखा कयामुल लैल का, तो डॉक्टर, हाँ, उन्होंने बताया कि जी वो तो सोने नहीं देते, यानी अस्पताल से बात शुरू हुई थी कि अस्पताल वाले स्ट्रिक्टली जो है ना वो इसको इन्फोर्स करते हैं अपने अस्पताल में, कि दिन को सोने नहीं देते और रात को जागने नहीं देते। ठीक है, तो फिर हमने उनसे रिकन्फर्म भी किया कि क्या वो मुसलमानों का हॉस्पिटल है। उन्होंने जवाब दिया नहीं, वो गैर मुस्लिमों का हॉस्पिटल है, यानी हिंदुओं का। इंडिया के अंदर तो हिंदू मेजोरिटी होती है, वो हिंदुओं का हॉस्पिटल है। आप यकीन करें, ये बात मैं पिछली क्लास में नहीं बता पाया था कि मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, राइट? और अच्छे अल्फाज में यह भी कह सकते हैं, इतनी गैरत आई, इतनी गैरत आई इस बात के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह गैरत आई, बेगैरत नहीं थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी गैरत आई कि हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, कि रात को जगाने का इंतजाम कर रहे हैं लोगों का, कयामुल लैल, और वो भी दीन के नाम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक थी, क्योंकि खुद ही साजिश नहीं, वो प्रोग्राम कॉल भी किया था, अरेंज भी कर रहा था बाकी साथियों की मदद से ऑफ कोर्स, कि उस कयामुल लैल को कयामुल नहार के अंदर तब्दील कर दिया। कयामुल लैल को कयामुल नहार के अंदर तब्दील कर, नहार होता है ना दिन, ठीक है, वो जाल लैला व नहारा, ठीक है। तो ये जो रात का जो सिलसिला है ना, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, और इसके बरक्स जो निजाम होता है ना, वो शैतान का बनाया हुआ निजाम होता है, क्योंकि शैतान ने कस्में खाई हुई है बनी आदम को बर्बाद करने की। और वो कैसे बर्बाद करता है? अल्लाह की मर्जी के खिलाफ, जो अल्लाह की मर्जी बस उसके खिलाफ, जो अल्लाह की मर्जी बस उसके खिलाफ, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर लिबास, मर्द और औरत का लिबास होता है ना, ठीक है, कभी आपने देखा गोरों को, ये जो गोरे होते हैं, तो इनमें मर्द का लिबास कैसा होता है और औरत का लिबास कैसा होता है? क्या मर्द जो है वो छोटे छोटे कपड़े पहनता है और औरत जो है वो पूरे पूरे कपड़े पहनती है? हालांकि कपड़े तो दोनों के लिए जीनत का बायस होते हैं, मर्द के लिए भी कपड़े जीनत का बायस होते हैं, औरत के लिए भी कपड़े जीनत का बायस होते हैं। तो भाई क्या औरत जो है वो इन काफिरों की बात हो रही है, क्या औरत जो है वो ज्यादा कपड़े पहन करके सूट बूट के अंदर, थ्री पीस सूट, और जो है वो ये भी पहनी हुई, वो भी पहनी हुई, वो भी पहनी हुई, और मर्द जो है वो छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकता था? यानी शैतान ने अगर कुछ उल्टी हरकत करवानी थी तो मर्द को छोटे छोटे कपड़े, औरत को पूरे पूरे कपड़े, लेकिन नहीं, मर्द पूरे कपड़े पहनता है, औरत जो है वो कम से कम से कम से कम, जितना कम से कम हो सकता है उतना जो है वो औरत पहनती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का जो है वो मर्द का हुक्म, मर्द का जो सतर है वो अल्लाह ताला ने मुख्तसर बनाया, मर्द को पूरा पहना कपड़े पहनवाते हैं, है ना। मर्द का सतर कितना है? नाप से जो है वो घुटनों तक। तो अल्लाह ताला ने मर्द का सतर मुख्तसर बनाया, इसको जो है वो पूरे कपड़े पहनाते हैं। जिद, देखिए उल्टा काम करना, जो अल्लाह ने कहा उसका उल्टा, उसका सतर मुख्तसर, इसको पूरा कपड़े। हम ये नहीं कह रहे कि मर्द को कम कपड़े पहनने पर चाहिए, नहीं, कपड़े कम तो दोनों को नहीं पहनने चाहिए, लेकिन शैतान की हरकत देखें, ठीक है। और इधर औरत का सतर जो है वो पूरा का पूरा बनाया, ठीक है ना, पूरा का पूरा बदन औरत का जो है वो सतर है। सतर में जो है वो चेहरा दाखिल नहीं होता और हथेलियां दाखिल नहीं होती, सतर में वो हिजाब में दाखिल होती है, ठीक है। तो चूंकि पूरा का पूरा बदन औरत का सतर, तो अब इसका बरअक्स कैसे होगा? कम से कम औरत को, ठीक है। तो जो काफिर होते हैं या काफिरों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, चाहे वो नाम के मुसलमान भी हों, वो औरत का लिबास कम, ठीक है। उसी तरह से औरत के पैर की आवाज, औरत के पैर की आवाज जो है वो, उसको अल्लाह ताला ने मना करवाया कि ये आवाज भी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पैरों की, चलने की आवाज। हील्स, मर्दों को हील्स नहीं पहना सकता था। हम तो बिल्कुल पीछे की बात कर रहे हैं ना, कि भाई जब फैशन डेवलप हो रहा था जूतों का फैशन, तो उस वक्त हील्स जो है वो मर्दों के लिए, ठीक है भाई, मर्दों को जो है वो काम करना होता है तो हर वक्त हील्स नहीं पहन सकते, लेकिन दावतों में तो पहन सकते हैं ना, दावतों के अंदर तो मर्द हील्स पहन सकते हैं ना, लेकिन मर्दों को हील्स नहीं पहनाता। क्यों नहीं पहनाता? इसलिए कि मर्दों के पैर की आवाज का मसला ही कोई नहीं, राइट? अल्लाह का हुक्म ही कोई नहीं मर्दों के लिए कि पैरों की आवाज जो है तुम्हारी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म तो क्या, औरत के पैरों की आवाज, तो औरत को हील्स पहनाता है, ठक 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 करके चल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो उल्टा काम, उल्टा काम, उल्टा काम, बस अल्लाह ने जो कहा उसका उल्टा, ठीक है। दुश्मनी होती है ना जब किसी के साथ, तो ऐसे ही होता है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को ईमान की वजह से कुफर और काफरी से दुश्मनी थी, कुफर और काफरी से दुश्मनी थी। काफिर फर्द से नहीं, काफिर मर्द से नहीं, काफिर औरत से नहीं, बल्कि कुफर से, है ना, अल्लाह की नाफरमानी से नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम हर काम यहूदियों से हट करके करते थे, जो यहूदियों का निजाम होता था उससे हट के काम करते थे। मुशरिकीन के साथ भी ऐसा ही, मुशरिकीन भी पगड़ी बांधते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मैं टोपी के साथ पगड़ी बांधूंगा, टोपी के बगैर पगड़ी, वो टोपी के बगैर पगड़ी बांधते थे, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीजों के अंदर तो यहूदियों की हर चीज में मुखालफत करते थे नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि दुश्मनी थी ना, कुफर और काफरी से दुश्मनी थी, दिल के अंदर नफरत थी। तो अब यहूदियों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि इनका दीन तो बस हमारी मुखालफत है और कुछ नहीं है, इनका दीन, इनका दीन तो सरासर हमारी मुखालफत है और कुछ नहीं है इनका दीन, ठीक है। हालांकि मुखालफत तो कुफर और काफिरी की थी, और वो तो है हमारा दीन, नबी अलैहिस्सलाम का दीन है कुफर और काफिरी की मुखालफत, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत जो है वो प्रीडोमिनेंट चीज, इंसानों की भलाई है उसके अंदर, और कुफर और काफरी की नफरत क्यों है, मुखालफत क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इंसानों का नुकसान, इस वजह से। लेकिन कहने का मकसद यहां पर यह है कि जिससे नफरत होती है ना, बस उसकी मुखालफत करनी होती है। इसको वो ये भी कहते हैं कि जिद जिद आ जाती है बस इंसान के अंदर। तो दिन और रात का निजाम का भी यही मामला है कि जो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम, बस उसकी जिद, अब उसके लिए कोई ना कोई बहाने बनाता है, या नहीं इबादत करो बैठ करके, तुम रात रातों को जाग जाग करके इबादत करो, ठीक है ना, रातों को जाग जाग करके जो है ना वो तुम ये करो और वो करो इस तरह की चीजें, और दिन में सोते सोए पड़े रहो, ठीक है ना। वो उसको नहीं कहता, वो तो खुद ही तुम सोओगे, उसको पता है ना जब रातों को जागेगा तो दिन में खुद ही सोएगा, ठीक है। तो वो खाली वो बात करता है जिससे कि नफ्स को खुशी हो, वो वाली बात करता है, बाकी बात जो है वो इम्प्लिसिटली हो जाती है, ठीक है। इन्होंने कहा हजरत हमें तो दीन ये भी सिखाता है कि रातों को उठकर रोना, रातों को इबादत करना, या इस तरह से रात की इबादत बहुत अच्छी है, तो उसको हम किस तरह से देखें। फिर इसका तो जवाब आप खुद ही देंगे, मैं क्यों दूं इसका जवाब, हमारा दीन ये सिखाता है। दीन पहली बात है किसका नाम है, दीन अंकल, अंकल दीन आपको ये सिखाते हैं, हम लोग भी इसमें शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी जी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा दीन ये नहीं सिखाता, सॉरी सॉरी, हमारा दीन ये नहीं सिखाता, ठीक है, जिसको कि आप समझ रही हैं हमारा दीन सिखाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जवाब दें, आप बोला है क्या, आप इसका जवाब देखो दें। चले, आज की गुफ्तगू का अनवान है स्लीप मैनेजमेंट, नींद का निजाम। तो औरत की जिंदगी में नींद का एक अहम कैरेक्टर का किरदार है, अगर नींद पूरी ना हो तो उसके दिन के काम मुतासर होते हैं। ये हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, हम किसी बेदीन इंसान की किताब पढ़ रहे हैं, हजरत मौलाना पीर दुलफकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्ला अलैह, या हम किसी न्यूटन की किताब पढ़ रहे हैं, आइंस्टाइन की किताब पढ़ रहे हैं, हैं? रातों की नींद, रातों को सोना, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और फिर बच्चों की तरबियत पर भी बुरा असर पड़ता है। कौन कह रहा है ये बातें। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने खाना पीना जिस्म की जरूरत बना दी है, इसी तरह थके हुए बदन को नींद की भी जरूरत होती है। अच्छी नींद से इंसान की जिंदगी भी अच्छी गुजरती है, औरतों में नींद और कमखाबी की शिकायत आम होती है, इसलिए उसको मुस्तकिल उन्वान बनाया गया कि औरत अपनी नींद का ख्याल कैसे रखे, ठीक है। तो भाई इनके सवाल का जवाब ये तो नहीं दे रही, कोई और ही दे दे भाई, कि हजरत हमें तो ये दीन ये भी सिखाता है कि रातों को उठकर रोना, रातों को इबादत करना, या इस तरह की इबादत बहुत अच्छी है जो रातों को की जाए, तो उसको हम किस तरह से देखें, फिर किस तरह से देखना चाहिए इसको, क्योंकि पिछली क्लास में बात हो चुकी थी, इस वजह से आप हमको पूछ रहे हैं। एक रात जागने से दिन में ज्यादा सोते हैं और नींद भी अच्छी नहीं आती, रात की बात ही कुछ और है। जी जी बिल्कुल कुछ और है, क्योंकि अल्लाह ने कुछ और बनाई है रात की बात, उसी में सोने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। अच्छा तो जिंदगी के मुख्तलिफ साइकल्स, अच्छा पिछली दफा जो है वो हदीस की भी बात हुई थी, पर आप लोगों को जो है वो हदीस जो है वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज भी दी थी, ठीक है, इन्ना लिनफ्सि का अलैक हक्कन व लिरब्बिक अलैक हक्कन। जब वो शुरू हुई थी बात हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू दरदार रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या नसीहत करी थी और उनको उनको सुला दिया था। अच्छा, वो जो हदीस है जो आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, वो हदीस जो है वो वाकया कहाँ से शुरू हुआ? वो वाकया शुरू हुआ दिन के वक्त से। ठीक है, दिन के वक्त से शुरू हुआ क्योंकि वो खाने बैठे थे और अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाने से इनकार कर दिया था और कहा कि मैं रोजे से हूं, आप खाएं, मैं तो रोजे से हूं। तो रोजा किस वक्त रखता है इंसान? रोजा तो मगरिब से पहले पहले होता है ना। ठीक है, तो खा कब रहे थे? जब मगरिब नहीं हुई थी, क्योंकि मगरिब के वक्त तो इफ्तार करना होता है। दीन इस्लाम में कभी भी ऐसा कोई रोजा नहीं हुआ कि जो कि मगरिब के आगे भी चलता हो, राइट? जो मगरिब के आगे भी चलता हो। तो वो जो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रोजे से थे, तो इसका मतलब क्या है कि वो मगरिब से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर क्योंकि नफली रोजा था तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का रोजा तोड़वा दिया और कहा नहीं तुम भी खाओ, मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे। ठीक है, मेहमान के लिए रोजा तोड़ देंगे, जिसको कहते हैं मेहमान के लिए नफली रोजा तोड़ देंगे। ठीक है, फिर बाद में नफल आप कदा करें, आपने क्यों रखा था नफली रोजा अगर मेहमान ने आना था, या मेहमान की का इकराम के अंदर इतनी इतनी अहमियत है कि नफली रोजा जो है वो भी तोड़ देना है। ठीक है, ये नहीं कि नफली रोजा रखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखें, लेकिन हर वक्त नहीं रखें। ठीक है, अच्छा, तो और मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज के बाद जो भी बैठे, इशा की नमाज तो कजा करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इशा पढ़े बगैर ही मगरिब पढ़ करके सो गए होंगे वो लोग, नहीं। इशा पढ़ी, अब इशा के बाद वो खड़े हो गए नफले पढ़ने के लिए, सलमान फारसी ने फरमाया सो जाओ, नफले मत पढ़ो सो जाओ। ये किस वक्त की बात हो रही है? ये इशा की नमाज के बाद की बात हो रही है कि वो इशा के फौरन बाद ही नफले पढ़ने शुरू हो गए। इन्होंने कहा नहीं सो जाओ, ये सोने का वक्त है, इशा के बाद सोने का वक्त है। ठीक है, फिर थोड़ी देर सोने के बाद फिर उठ गए, फिर नफले पढ़ना, नहीं, सो जाओ, फिर सो जाओ। सलमान फारसी रतान जो है वो ऐसे, या तो उनकी नींद ऐसी थी वो खुद सो रहे थे, लेकिन जरा सी होती है ना कि आवाज से जाग गए, तो अबू दरदार को देखा फिर नफने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं फिर सो जाओ, जाओ जाओ जाके सो जाओ। ठीक है, और अबू दरदार भी देखें कितनी खूबसूरती है कि सलमान फाजन उम्र में भी बड़े थे और उनके हिसाब से वो मुकाम में भी बड़े थे, इल्म में भी बड़े थे। अबू दरदार जो है वो खामोशी से उनकी बात मान भी रहे, ये तो नहीं कह रहे तुम तो अल्लाह के नबी को थोड़ी हो, मैं तुम्हारी क्यों बात मानू, तुम कौन से अल्लाह के नबी हो, तुम्हारी क्यों मानो, तुम भी तो साहबी हो ना, मैं भी साहबी हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने हुक्म दिया, ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू गाइड हिम। ठीक है, सलमान फारसी, ये नहीं कहा कि मैं क्यों कहूं किसी को, मैं तो खुद साहबी हूं, मैं तो खुद तालिब इल्म हूं, मैं किसी को क्या कह सकता हूं। नहीं, उन्होंने कहा भाई मेरे पास इल्म है, मेरे पास समझ है, मेरे पास तजुर्बा है, मैं अपने साथी को गलत काम नहीं करने दूंगा। और साथी ने भी फौरन बात मान ली, जिद नहीं करी, अकड़ नहीं दिखाई, बहस नहीं करी, फौरन बात मान ली। ठीक है, तो ये चंद आदाब होते हैं इल्म हासिल करने के ना, और खैरख्वाही के आदाब होते हैं जो तो हमें सहाबा की जिंदगी से होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब तीसरा पहर आ गया रात का, तहज्जुद का वक्त दाखिल हो गया, अब उन्होंने कहा अब उठो, अब नमाज पढ़ो। ठीक है, तो रातों को जागना जो है ना, एक तो ये है रातों को जागना आखिरी रात के हिस्से के अंदर जागना, और दूसरा ये, दूसरी भी बात हमने करी थी कि जो खास लोग जो हैं जिनको रात को जागना पड़ता है तो वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कैन नेवर बी मेड द रूल। वो पहरेदारों की मिसाल दी जाती है उसके लिए, पहरेदार किस्म के जो लोग होते हैं वो रात को जागना उनके लिए जरूरी है, लेकिन वो एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, हमने सबको जो है वो रूल बना दिया, पूरा दिन ही जो है ना वो रात को जागने का नाम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, यानी सारी 40 साल तक रातों को जागते रहे। तो भाई अगर तो ये बात सही है भी, अगर, क्योंकि ये तो रिवायतें होती हैं, ये कोई कुरान हदीस की थोड़ी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के वाकयात जो है ये कुरान हदीस की तरह से ऑथेंटिक थोड़ी होते हैं। लेकिन चले अगर ऑथेंटिक है भी ये बात कि वो 40 साल तक इस तरह से पढ़ते रहे, तो भाई वो इमाम अबू हनीफा थे ना, राइट? और इमाम अबू हनीफा कौन है? फिकहा के इमाम आजम, जो के सारे दूसरे फुकहा के भी इमाम माने जाते हैं, राइट? तो इमाम अबू हनीफा एक्सेप्शन नहीं कहलाएंगे तो फिर और कौन एक्सेप्शन कहलाएगा? बाद की नस्लों में अगर कोई एक्सेप्शन कहलाने के काबिल है तो इमाम अबू हनीफा जैसे लोग ही एक्सेप्शन कहलाने के काबिल होंगे ना। तो इसके ऊपर आप पूरे दीन को तो कयास नहीं कर सकते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की किसी आदत को, ठीक है? तो शेर व शायरी के मैं रातों को जागता हूँ तुम्हारे ख्याल में, भाई ये शेर व शायरी है, शेर व शायरी, शेर व शायरी के अंदर जो है ना वो एक्सेस वगैरह चलती है उसके अंदर, क्योंकि शेर उसके बगैर आप कह भी नहीं सकते, यानी मुबालगा मुबालगा आमेजी के बगैर शेर जो है ना वो शेर बनते नहीं है। तो इस वजह से शेर व शायरी के अंदर इस तरह की चीजें चलती हैं, ठीक है? अच्छा, इन्होंने क्या लिखा कि वो तो रात का आखिरी पहर है और वो भी तब इजाजत है जब फर्ज हुकूकुल्ला यानी फजर कदा ना हो और हुकूकुल इबाद भी मुतासर ना हो, वरना उसकी भी इजाजत नहीं है। और फिर मुख्तसर इबादत के बाद दोबारा सोना और फजर के लिए उठना सुन्नत है, ठीक है? तो ये दीन के अंदर ये तफसीलात है ना, ये थोड़ी नारे मारे और नारों को जो है वो आपने पूरा दीन समझ लिया, रातों को जागना वगैरह। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे रात की नींद के बारे में, और ये अल्लाह ताला की निशानी भी है। अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहते हैं कि तुम बेशक बड़े फिक्रमंद हो अपने कामों के बारे में, ठीक है ना? जैसे दफ्तर के अंदर कोई मैनेजर हो और उसको बहुत अहम काम करने हो और वो जानता हो कि ये मेरे काम बड़े अहम हैं, अगर ये छोड़ दिए तो फिर जो है वो मसला हो जाएगा और काम कैसे चलेगा और नुकसान हो जाएगा, तो सारे काम करने, लेकिन वो काम इतने ज्यादा हैं इतने ज्यादा हैं इतने ज्यादा हैं कि ये करता रहता है और काम खत्म ही नहीं होते है? बल्कि और नए काम आ जाते हैं ऊपर से। तो अब जो है ना ये समझता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो काम कैसे होगा? अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, तुमने तो काम करना ही नहीं है ना, ये काम तुमने नहीं करने, तुम तो सो जाओ जा करके। अल्लाह ताला उसको सुला देते हैं, ठीक है? और दुनिया फिर भी चलती रहती है, दुनिया के काम खत्म नहीं होते, हत्ता के दफ्तर भी जो है वो चलता रहता है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम अपने आप को मत समझना शुरू कर दो कि काम सारे सारे काम तुमने करने, ये मत समझना शुरू कर दो कि सारे काम तुमने करने और तुम नहीं करोगे तो ये काम होंगे नहीं, नहीं मैं हूं करने वाला। अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं रोजाना कि मैं हूं काम करने वाला, तुम तो बस कार्रवाई डालो, तुम तो बस जितना तुम कर सकते हो ना बस सारे हुकूक को पूरा करते हुए तुम जितने काम कर सकते हो तुम बस उतने काम करो, ठीक है? तो दफ्तर वाला भी इसी तरह से गलतफहमी में मुब्तला होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि कभी दीन वाले भी गलतफहमी में मुबतला होना शुरू हो जाते हैं कि दीन के काम तो सबसे आला काम है और इबादत तो सबसे आला काम है, तो अगर मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, और अगर मैंने नहीं किया तो काम कैसे चलेगा, लोग हिदायत पे कैसे आएंगे हैं? लोग हिदायत पे नहीं आ सकेंगे अगर मैंने सारे काम मुकम्मल नहीं किए, ठीक है? नहीं, तुमने हिदायत पे लाना ही नहीं है किसी को। अल्लाह ताला इवन दीन वाले को भी जो है ना वो ये बात याद दिलाते रहते हैं कि ये काम तुमने नहीं करने, ये तो मैं कर रहा हूं, ये तो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? तुम्हारी गलत फहमी जो है ना वो तोड़ूंगा, तुम्हें सुनाऊंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यू आर नॉट द वन हु वाज डूइंग थिंग्स, ठीक है? तो ये अल्लाह ताला की निशानी है जिसमें एक ईमान वाला फिर उसको अल्लाह की अजमत याद आती है, समझ में आती है, ठीक है? बहरहाल, तो आगे जो है वो जिंदगी के मुख्तलिफ साइकिल्स हजरत ने फिर बयान फरमाए कि नींद के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जहन में रखें कि हमारी जिंदगी मुख्तलिफ साइकिल्स में गुजर रही है, ठीक ठीक है, साइकिल किस चीज को कहते हैं जो कि जिस जगह से शुरू होता है ना तो फिर वो वहीं पे वापस आ जाता है, इसको साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो अब बात नींद की हो रही है लेकिन इतने सारे साइकिल्स बयान कर रहे हैं जो कि आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से बात किसी टॉपिक पे होती है लेकिन उसके आगे पीछे बहुत सारी बातें करनी पड़ जाती हैं, जैसे आपको सुननी पड़ गई हैं पिछले 2 घंटों से, पिछले हफ्ते भी 1 घंटा सुना, आज भी जो है वो आपने अच्छा खासा इधर उधर की बातें सुनी, लेकिन जरूरत होती है चीजों की, एक्स्ट्रा बातें करने की। अच्छा, तो फरमाते हैं कि दिन रात का साइकिल क्या होता है भाई। तो मिसाल के तौर पर दिन और रात का एक साइकिल है, दिन तुलू होता है, फिर दोपहर होती है, फिर सूरज गुरूब होता है, फिर रात आ जाती है और फिर सूरज तुलू हो जाता है। तो दिन रात के साइकिल में हमारी पूरी जिंदगी गुजरती चली जाती है। ठीक है, यानी इतनी अहम जिंदगी, लेकिन वो कुछ कहते हैं ना, मैं तो एक, कुछ लोग है ना फ्रस्ट्रेट होकर के बोलते हैं, मैं तो बस एक दायरे में ही घूमी चली जा रही हूँ, मैं तो बस एक दायरे में ही घूमी चली जा रही हूँ, कहीं पहुंच ही के नहीं दे रही। तो भाई अगर वो जवाज के दायरे में है, अगर वो दायरा जो है वो कोई हराम काम आप नहीं करनी कि आप गुनाह के साइकिल में घूमी चली जा रही हैं, गुनाह के साइकिल में घूमी चली जा रही है, वो तो बुरी बात है, गुनाह के साइकिल में क्यों आप घूम रही हैं। लेकिन साइकिल में घूमना इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, साइकिल में घूमना इटसेल्फ कोई, यानी मुतलकन कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी को साइकिल में ही बनाया, तो हमने जो नेकियां करनी है ना वो साइकिल के अंदर ही रह के करनी है। इस साइकिल से बाहर निकल करके कोई आगे निकल जाना, कोई बाहर चले जाना, ये कोई कामयाबी नहीं है, और इसको करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है कि साइकिल से बाहर निकल जाओ। भाई आप साइकिल के अंदर रहते हुए नेकी करें और साइकिल के अंदर रहते हुए गुनाहों से बचें, ये कामयाबी है। ठीक है, तो दिन और रात का जो साइकिल अल्लाह ने बनाया है तो कोई निकल के दिखाए इसमें से। ठीक है, चांद पे भी चले जाएंगे तो फिर भी लौट के इधर ही वापस आना पड़ेगा, और कोई नहीं चांद वांद पे जाना ही, तो तमाशे करते रहते हैं, कभी चांद पे चले गए, दुनिया से बाहर निकल गए, खैर दुनिया में ही रहने और इसी साइकिल के अंदर ही रहने। फिर इस दुनिया के अंदर मौसम का साइकिल बनाया अल्लाह ताला ने, कि इसी तरह अगर आप देखें तो मौसम का भी एक साइकिल है, सर्दी होती है, फिर बहार आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर खिजा आ जाती है, फिर से सर्दी वापस आ जाती है। तो इस सीजन के साइकिल में हमारी पूरी जिंदगी गुजर रही है। ठीक है, तो इन्हीं सीजन के अंदर ही आपने अपने जिंदगी के सारे काम करने हैं। अगले साल कोई नया साइकिल नहीं ईजाद होगा आपके लिए, क्योंकि अगले साल अल्लाह ताला ने कोई नया सीजन इंट्रोड्यूस किया था कि मेरे मेरे बंदे बोर हो गए होंगे, ये स्प्रिंग ऑटम विंटर्स, इनसे नया साइकिल नहीं, कोई अल्लाह ताला नया साइकिल नहीं देते, वही पुराना साइकिल, उसी में जिंदगी तुम्हारी गुजरनी है। फिर उसके बाद चांद का साइकिल, तो फरमाते हैं कि अगर हम चांद पर गौर करें तो उसका भी एक साइकिल है। एक वक्त होता है कि चांद बारीक नजर आता है, उसको क्रेसेंट हिलाल कहते हैं, उससे भी पहले जो है ना वो चांद पूरा का पूरा डार्क होता है, वो हमें नजर ही नहीं आता, उसको साइंस वाले जो है वो बर्थ ऑफ न्यू मून कहते हैं, या उसको न्यू मून कहते हैं, जब वो मून बिल्कुल डार्क होता है, नजर ही नहीं आता। तो जो ज्यादा साइंसदान बन गए ना, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा दीन भी था, तो उन्होंने साइंस से जो है वो न्यू मून की तारीख ली और कहा कि जी बस रमजान शुरू हो गया। ठीक है, जब साइंस ने कहा कि न्यू मून की बर्थ हो गई तो उन्होंने भी कहा कि रमजान मुबारक शुरू हो गया, हालांकि चांद नजर ही नहीं आया। ठीक है, तो बड़े अरसे तक इस तरह के जो मुसलमान हैं ना ये गलत फहमी का शिकार रहे, यानी सूडो मुस्लिम मोर साइंटिस्ट टाइप के जो मुसलमान थे। फिर बाद में फिर अल्लाह ताला ने हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियात को जो है वो तौफीक अता फरमाई, उन्होंने फिर बात समझाई कि अल्लाह के बंदे तुम जिस न्यू मून को न्यू मून समझ रहे हो ना, वो न्यू मून नहीं है, न्यू मून तो सिर्फ वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हमारे नजदीक न्यू मून की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, और वो है जब आपको नजर आता है वो न्यू मून, जिसको क्रेसेंट कहते हैं। फिर वो सारी जो है ना ये मेहनतें शुरू हुई कि अच्छा न्यू मून जो होता है वो पूरा जो जो उसके इनविजिबिलिटी कर्व वगैरह बनना कि भाई अब ये चांद नजर आ सकता है नहीं नजर आ सकता, ये सारी चीजें उसमें उसके बाद शुरू हुई, वरना तो वो साइंसदानों के से लेकर के जो है ना वो रमजान का महीना शुरू कर दिया करते थे अमरीका यूरोप वगैरह के अंदर। अच्छा तो कहते हैं कि ये इसको क्रेसेंट हिलाल कहते हैं, वो जो बिल्कुल बारीक होता है, इस्लामी महीने की इब्तिदा यहां से होती है, फिर 13, 14 और 15 तीन ऐसी रातें होती हैं कि जिनमें चांद भरपूर होता है, जोबन पर होता है, जोबन पर होता है, जोबन का मतलब होता है कि बिल्कुल अपने एक्साइटमेंट की कंप्लीट हालत में होता है चांद, ठीक है, यानी पूरा सफेद नजर आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसका जोबन भी कैसा होता है, इवन जोबन के हालत में भी चांद आधा तारीख होता है ना, हमें तो बड़ा खुश नजर आ रहा होता है, क्योंकि जोबन का मतलब है कि खुश, जब हिरन जो है ना, हिरन एक खास किस्म का हिरन होता है, तो उसकी नाफ के अंदर खुशबू होती है जिसको मस्क कहते हैं, मुश्क, ठीक है, तो वो खुशबू जो उसके नाफ के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है ना, तो वो एक खास मौका आता है साल के अंदर कि जिसमें वो खुशबू फूटनी शुरू हो जाती, और वो खुशबू इतनी अच्छी खुशबू होती है, यानी उस खुशबू का मुकाबला दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकती, खुशबू कोई दूसरी खुशबू नहीं मुकाबला कर सकती, वो हिरन के अंदर होती है, जब वो खुशबू फूटती है ना, तो सबसे पहले तो वो उस हिरन को ही आती है वो खुशबू, तो हिरन अपनी खुशबू सूंघ करके उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, बाकायदा उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं कि हिरन का जोबन, हिरन अपने जोबन पर है, यानी खुशी की इंतहा पर है ये हिरन, वो अपनी खुशबू सूंघ करके होता है इस तरीके से, ठीक है, फिर उसी को, फिर हिरन को जो है वो लोग शिकार करते हैं, फिर उसके पेट के अंदर से वो खुशबू निकालते हैं, और फिर उसके अंदर पानी मिला मिला करके उसको फिर महंगे महंगे दामों के ऊपर बेचते हैं, क्योंकि पानी मिलाने के बाद भी उसकी इतनी खुशबू बरकरार रहती है उसके अंदर। बहरहाल तो ये जोबन का लफ्ज, इसकी ये बैकग्राउंड है, तो चांद अपने जोबन पर होता है लेकिन बेचारा उस वक्त भी आधा तारीख होता है, ठीक है, वही साइड होती है रोशन होती है ना जो सूरज की साइड पर होती है, वरना तो बहरहाल तो जोबन की भी ये हकीकत है, तो इनको अय्यामे बीद कहते हैं, सफेद अय्याम, जैसे बैगुन अंडे को कहते हैं, अंडा जो है वो टिपिकली सफेद होता है, तो उसको बैद कह देते हैं, बैद का जो लफ्ज है ये सफेद माने होते हैं इसके, वो रातें गोया के सफेद रातें होती हैं जब चांद पूरा होता है ना, तो उन दिनों में रोजा रखना सुन्नत अमल है, यानी महीने की हिजरी एतबार से 13, 14 और 15 नबी अलैहिस्सलाम इन 3 दिनों में रोजा रखा करते थे, पूरे महीने में रोजा नहीं रखा करते थे, ठीक है, और फिर पीर और जुमेरात ये भी नबी अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे, ये नफली रोजे थे नबी अलैहिस्सलाम के, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता था कि क्योंकि अल्लाह के नबी हैं तो रोजा रखना जो है वो अल्लाह ताला की महबूब इबादत है, तो अब जो है वो पूरा पूरा महीना रोजा रखें, बल्कि नहीं, ठीक है, शाबान में थोड़ा सा ज्यादा रोजा रखा करते थे, इससे भी ज्यादा, ठीक है, लेकिन उम्मत के ऊपर ना नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी मशक्कतें नहीं करी हैं, जो उम्मत के अंदर अपने दीगर फराइज और दीगर जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए रोजा रख सकता है वो नफी रोजा रखे, अय्यामे बीस के भी रखे, और जो है वो पीर और जुमेरात के भी रोजे रखे, जो फर्ज रोजे हैं ना, फर्ज रोजे वो तो इंतहाई आसान रोजे, रमजानुल मुबारक के फर्ज रोजे ये इंतहाई आसान रोजे, अब उसके ऊपर किसी के जहन में सवाल हो कि भाई ठीक है हम आपकी बात मानते हैं कि जो सर्दियों के दिनों के रोजे हैं वो तो इंतहाई आरामदेह होते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे रोजे होते हैं, लेकिन जो गर्मियों के दिनों के रोजे होते हैं वो तो आसान नहीं होते, वो तो बहुत लंबे रोजे होते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, लेकिन हकीकत ये है कि रमजान मुबारक के रोजे चाहे वो सर्दियों में हो चाहे वो गर्मियों में, वो सारे के सारे बहुत आसान रोजे होते, ऐसा क्यों, रमजान मुबारक के रोजे चाहे सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में हो वो आसान रोजे ही होते हैं, इसकी वजह क्या है, अगर आप मुझसे कोई बताना चाहो। रमजानुल मुबारक के रोजे आसान रोजे होते हैं, ऐसा क्यों? चाहे वो सर्द चाहे वो गर्मियों में क्यों, वो आसानी होता। कभी किसी ने सोचा इस तरह से? क्योंकि सब रखते हैं, इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि सब रखते हैं माहौल की वजह से। भाई रोजे का ताल्लुक तो पेट के साथ है, ठीक है, तो माहौल की वजह से तो इतना आसान हो जाता है कि सहरी में उठना आसान हो जाता है और अफ्तारी में पकौड़े खाना आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग बना रहे होते हैं, तो अगर घर में ना भी बने तो बाजार से आ जाते हैं, तो माहौल की वजह से तो सहरी करनी आसान हो जाती है और जो है वो अच्छी सी अफ्तारी खानी आसान हो जाती है। पेट का क्या ताल्लुक माहौल के साथ? जी बिल्कुल सही, उन्होंने जवाब दिया कि रमजान मुबारक के जो रोजे हैं ना वो रोजाना रखे जाते हैं विदाउट गैप, ठीक है, तो रोज रोज रखने से आपके बदन को आदत हो जाती है। विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर जो है ना वो इंसान के बदन को आदत हो जाती है किसी रूटीन की, ठीक है, तो जब रूटीन बन जाती है ना तो फिर वो मसला खत्म हो जाता है। इसके अच्छा इसकी दलील हमने आज अजीब अल्लाह ताला ने दिल में डाली कि हमने वो हमें याद आया कि हजरत जी एक वाकया सुनाया करते थे कि जब हमारे बेटे छोटे थे ना, तो वो यानी काफी सालों पहले की बात है, जब हजरत जी के साहबजादे साहब दोनों बेटे छोटे छोटे होते थे, तो कहने लगे कि एक दफा एक साहब मिलने के लिए आए हमें महाद, तो पहले जो है वो जो छोटे बेटे हैं उन उनसे मुलाकात हुई उनकी उन साहब की, तो थोड़ी देर में ना वो छोटे बेटे हमारे पास आए कि अबू जी ये जो साहब मिलने के लिए आए ना ये बता रहे हैं कि ये पिछले 35 साल से रोजाना रोजा रखते हैं, 35 साल से ये रोजाना रोजे से होते हैं। और वो बड़े हैरान और परेशान होकर के बात बता रहे हैं अदू जी को। अदू जी ने फरमाया ये कौन सी बड़ी बात है, इनसे कहो कि एक दिन रोजा रखें दूसरे दिन अफ्तार करें, एक दिन रोजा रखें दूसरे दिन अफ्तार करें, जिसको सौम्य दाऊदी कहा जाता है, ये करके दिखाएं। तो जब उन साहब को ये बात बताई गई ना कि हजरत जी ये फरमा रहे हैं कि आप एक दिन रोजा एक दिन अफ्तार करें, अच्छा इफ्तार करने का मतलब ये नहीं है कि मगरिब में खाएं, ठीक है ना, उन्होंने कहा बड़े तो बड़ा खाने, एक दिन अफ्तार करने का मतलब मैं अगले दिन भी मगरिब में खाता हूँ, सुबह को नियत नहीं करूंगा रोजे की लेकिन खाऊंगा मैं मगरिब के वक्त, नहीं, अफ्तार करने का मतलब ये है, एक दिन अफ्तार करने का मतलब ये है कि तुमने दिन में दोपहर का खाना खाना होगा, ठीक है, दिन में दोपहर का खाना खाओ, सही है, इसको अफ्तार करना कहते हैं, यानी दिन में अफ्तार करने का ये मतलब। तो उसने कहा कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि जो मैं रोजाना रोजे रखता हूं ना तो मेरी बॉडी को आदत हो गई है, अब बस मैं जो हूं वो नियत कर लेता हूं सुबह को, कुछ थोड़ा बहुत खा वा करके मैं नियत कर लेता हूं और सारा दिन जो है मैं खाए बगैर गुजारा कर लेता हूं, मगरब में मैं खा लेता हूं, रोजाना मैं ऐसे ही करता हूं, माई बॉडी हैज बिकम यूज टू इट, ठीक है। तो रमजान मुबारक में क्या होता है, चाहे जैसा भी रोजा हो आपकी बॉडी यूज टू बन जाती है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने देखें इससे सबक क्या हमें मिला, अल्लाह ताला ने गो के फर्ज किया है उम्मत के ऊपर रोजा, ठीक है, और शुरू के 3 दिन तो तकलीफ होती है ना, क्योंकि उस वक्त तो आपकी बॉडी अभी यूज टू नहीं हुई होती है, तो इस वजह से ये भी मुश्किल है लोगों के लिए, ठीक है ना, एक तो ये कि अल्लाह का हुक्म मान करके खाना पीना छोड़ देना, ये इन ऑफ इटसेल्फ मुश्किल काम है, भूखे रहने की बात नहीं हो रही, बस हुक्म मान लेना ये नफ्स के ऊपर भारी होता है, ठीक है ना, कि भाई मैं क्यों खाना पीना छोड़ूं इस आदमी के कहने के ऊपर, क्योंकि अल्लाह की तो आवाज नहीं आई थी साहबा को, आवाज किसकी आई थी, रोजा रखो नबी अलैहिस्सलाम की थी ना, तो नफ्स कहता है मैं भी तो आदमी हूं, ये भी तो आदमी है, मैं आदमी की बात मान करके क्यों जो है वो अपनी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लेकर लेकर के आ गई, ठीक है, तो हुक्म का मानना ये सबसे भारी चीज होती है, भूखा भूखा रहना भारी चीज नहीं होती, हुक्म का मानना भारी चीज होती है किसी दूसरे के हुक्म का मानना, ठीक है, तो ये चीज भारी थी, और शुरू के 2-3 दिन जो है वो पेट के ऊपर भी भारी गुजरता है, जब तक आदत नहीं हुई होती है। तो बस इतना ही अल्लाह ताला ने कहा, बस इतना ही तुम कर लो, बाकी तुम्हारे लिए आसानी है। बाकी जो तुम्हारे 27 दिन गुजरेंगे ना, अंदाजन 27 दिन अप्रोक्सीमेटली, तो बाकी तुम्हारे लिए आसानी आसानी, फिर तुम्हें कोई टेंशन वेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो यही है अल्लाह के हुक्म की हकीकत। अल्लाह ताला हमें मुशक्कत में डालना नहीं चाहते, राइट? ताहा मा अनजलना अलैकल कुरआना लितशका। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, मा अनजलना अलैकल कुरआना, मैंने आपके ऊपर कुरान मजीद नाजिल नहीं किया कि आपको मुशक्कत में डाल दिया जाए। ये मुझे कोई मजे नहीं आते तुम्हें मुशक्कत में देख करके। तो तुम तो अपने आप को खुद मुशक्कत में डालते हो, मैं को तुम्हें मुशक्कत में डालता हूँ, मैं तो तुम्हें आसानी में डालना चाहता हूँ। ये जो मैंने तुम्हें दीन दिया है, ये तो तुम्हारे लिए आसानी की खातिर है, तुम्हारे लिए जिंदगी है ये दीन। बदबख्त शैतान कहते हैं नहीं, मुशक्कत है, ये मुसीबत है, हमारे परवरदिगार के खिलाफ करता है हमें और हमें मुशक्कत में डालता है इस तरीके से। ये है हकीकत, ठीक है। खामखा की मुशक्कतें करना जो है ना, ये अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कुछ नहीं मिलेगा हमें जो है वो टॉर्चर करवा कर कर करके। अच्छा, लेकिन अल्लाह का हुक्म, इसका मतलब ये नहीं है कि बस अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अपनी मर्जी पूरी करो और समझो कि हाँ ये मैं कोई टॉर्चर में कुछ थोड़ी जाना चाहता हूँ, उस पर अपनी मर्जी पूरी कर, तो नहीं, अल्लाह के हुक्म में ही आसानी है। बहरहाल, ये बात करनी थी आपसे। तो इन दोनों में रोजा रखना सुन्नत अमल है। फिर चांद घटना शुरू हो जाता है, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि चांद नजर ही नहीं आता, इसको न्यू मून कहते हैं। फिर उसके बाद नया चांद जाहिर होता है, क्रेसेंट नजर आता है और नया महीना शुरू हो जाता है। तो ये साइकिल, ये चांद का साइकिल, आजकल साइंसदान इस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। चुनाचे एग्रीकल्चर, जरात की फील्ड में उनका यह दावा है कि अगर हम चांद के साइकिल को मद्देनजर रख कर फसल बोएं तो फसल में बीमारियां भी कम आती हैं और उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी जब चांद जो है वो ज्यादा करीब होता है हमारे, और चांद की रोशनी भी जो है वो सूरज को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होती है, यानी चांद जो है वो सूरज की रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो उसका इतना इफेक्ट, यानी वो बाकायदा जमीन के ऊपर चीजों को इफेक्ट कर रहा होता है, फिजिकली इफेक्ट कर रहा होता है, सिर्फ इमोशनली एक इफेक्ट नहीं कर रहा होता कि हाँ चांद को देख करके हम इमोशनली बड़ा अच्छा फील करना शुरू हो जाता है, वो भी एक इफेक्ट ही है, राइट? हमारे जहन दिमाग के ऊपर अच्छी कोई फीलिंग आ जाए, ये भी तो हमारे ऊपर एक एक इफेक्ट ही है ना, जिसको के तसर्रुफ कहते हैं अरबी के अंदर, तसर्रुफ, ठीक है। तो खाली जहनी तसर्रुफ नहीं होता बल्कि फिजिकली तसर्रुफ, कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो, यानी जो 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 पेस्ट होते हैं तो वो उनका इफेक्ट जो है वो मार देता है, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है, यानी पुल होता है चांद का। अब मुझे इसकी कोई तफसील नहीं पता, लेकिन जाहिरी तौर पे जो समझ में आती है बात, कि जैसे चांद जो है वो समंदर के पानी को पुल करता है अपनी तरफ, जबी जो फुल मून की जो समंदर की हालत होती है वो ऊंची ऊंची वेव्स क्रिएट हो रही होती है, मद्दो जजर भी जिसको कहते हैं। भाई सा चांद की अट्रैक्शन होती है ना, मैग्नेटिक बॉडी है ना, जिस तरह अर्थ मैग्नेटिक बॉडी है, चांद भी तो एक मैग्नेटिक बॉडी है। अच्छा, तो ये तसर्रुफ, ये हमने कुछ दिन पहले रमजान मुबारक की तफसीर में, अगर आपको याद होगा तफसीर क्लासेस के अंदर, के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर भी पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के जो झूठे पर खुदा बनाए हुए थे उनकी कौम ने, तो उनकी नफी कैसे करी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने 3 किस्म के, नहीं बल्कि 4 किस्म के झूठे खुदा बनाए हुए थे। एक किस्म के झूठे खुदा जो है वो पत्थर के, लकड़ी के बुत थे, ठीक है। तो उनकी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना स्ट्रेट अवे कि ये तो तुम दलालो मुबीन में हो, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफी की हरकत कर रहे हो, तुमने जो है वो इनको खुदा बनाया हुआ, ये तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बाकी झूठे खुदा कौन थे उनके, सूरज चांद और सितारे। सूरज चांद और सितारों की इस झूठी खुदाई को उन्होंने ऐसे नहीं रिफ्यूट किया, बल्कि उसके लिए पूरी तफसील के साथ उनसे बात करी, ठीक है, और उनको कहा कि ये हाजा रब्बी, ये मेरा रब है और ये मेरा रब है और ये मेरा रब है, लेकिन फिर तीनों का इनकार किया कि नहीं, जो डूब जाता है ना वो मेरा रब नहीं हो सकता। तो वहां पर अगर आपको याद हो, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर जो हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें हजरत ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, मुतसर्रिफ फिल अहवान, के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो चांद सूरज और सितारों को हाजा रब्बी कहा था कि ये मेरा रब है, तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे कि भाई ये मेरे रब नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि नऊज बिल्ला कि ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, बल्कि वो क्या कह रहे थे, वो तौरिया कर रहे थे। तौरिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऐसी बात की जाए कि जिसमें सुनने वालों को ऐसा लगे कि आपका कोई और मानी है, लेकिन आप अपने दिल के अंदर कोई दूसरे मानी नहीं, ठीक है, जिसको के दूर के मानी कहा जाता है, आप दूर के मानी अपने दिल में नहीं, लेकिन सुनने वाला जो है वो तो जाहिर है जो करीब का मानी है वही समझेगा ना कि आप तो यही मतलब है करीब का मानी। तो जब उन्होंने कहा हाजा रब्बी, तो सुनने वाले ये समझे कि ये अपने आप को ये चांद को जो है ना वो अपना परवरदिगार कह रहे हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में क्या नियत कर रहे थे कि मैं इनको मुतलक परवरदिगार नहीं कह रहा, बल्कि मैं इनको सिर्फ रब का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रब हर उस चीज को कहते हैं कि जो के अहवाल के अंदर तब्दीली करने वाली हो, अहवाल को मैनेज करने वाली हो, तो उसको रब कह दिया जाता है, ठीक है। जैसे घर के अंदर जो माँ बाप होते हैं, खुसूसन बाप जो है वो उसको रब्बुल बैत कहा जाता है, क्योंकि वो भी घर के हालात के अंदर जो है वो उसका डिसीजन मेकर होता है वो, ठीक है। तो वहां पर हमने बात करी थी कि सूरज तसर्रुफ करता है अपनी रोशनी के जरिए से, और अपने अल्लाह के हुक्म से ही करता है, खुद से कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, लेकिन उसका तसर्रुफ होता है जमीन के अंदर, उसी तरह से चांद का भी तसर्रुफ होता है जमीन के अंदर, ठीक है। तो उस तसर्रुफ में फिर मजीद मजीद एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे हजरत ने लिखे हैं कि वो कैसे तसर्रुफ करता है। एक तसर्रुफ ये कि बीमारियां कम आती हैं फसल में और उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो वो गालिबन ऐसा होता होगा जिस तरह पानी को वो पुल करता है अपनी तरफ, ठीक है, उसी तरीके से ये जो पौधे होते हैं उनको भी अपनी तरफ पुल करता है, तो पौधों की जो ग्रोथ है वो स्पीड अप हो जाती है चांद के इस पुल की वजह से, अल्लाह आलम। फिर उसके बाद बच्चों की तरबियत, ठीक है, तो अजीब बात हजरत ने यहाँ पे नकल करी कि हत्ता के बच्चों की तरबियत के बारे में भी लूनर कैलेंडर पर काम किया जा रहा है, कि कई हजार स्कूलों के बच्चों पर रिसर्च की गई, तो पता चला कि जब चांद अपने जोबन पर होता है यानी फुल मून होता है, तो उन उन बच्चों के अंदर उन दिनों में खास तौर पर एरोगेंस भी बहुत ज्यादा हो जाती है, गुस्ताखी यानी एरोगेंस सख्ती, ठीक है, तो उसको गुस्ताखी का नाम भी दिया जा सकता है। और जब चांद इब्तिदा में होता है तो बच्चों के अंदर फितरी तौर पर मानने की सलाहियत ज्यादा होती है, माइल्डनेस। चुनाचे लूनर कैलेंडर को सामने रख के बच्चों को वो काम बताए जाते हैं कि जिन कामों को करवाना होता है तो बच्चे जल्दी मान लेते हैं, और जब बच्चे के अंदर एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं और वो बहुत एरोगेंट, जब ज्यादा जोबन पर देखें, चांद का जोबन उसका असर बच्चों के ऊपर भी हो रहा है, तो उनको वो काम बताए जाते हैं जिनमें उनमें मोटर एक्टिविटीज ज्यादा चाहिए होती हैं, यानी फिजिकल हरकती सरगर्मियां, तो जब उनसे फिजिकल काम करवाए, जो काम करवाने होते हैं ना, वो उन दिनों में बताते हैं उनको जब जो है वो चांद ने जोवन पर होता है। तो लूनर कैलेंडर को इस्तेमाल करते हुए बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है, ठीक है। ये तहकीकात जो है, इस किस्म की चीजें मुसलमान भी कर सकते थे, ये कोई नाजायज ना होता, लेकिन हमारी तो कोई दूसरी मजबूरियात है ना, क्रिकेट का पीएसएल हमने देखना है, आजकल पीएसएल चल रहा है शायद पाकिस्तान के अंदर, तो हम उनके अंदर लगे हुए हैं, जिन चीजों में हमें लगना चाहिए था वो गाफिल हो चुके हैं। बहरहाल काफिर के पास और कोई काम है नहीं, उसको हुकूक तो अदा करने नहीं है किसी के, ठीक है, ना वो अल्लाह का हक अदा करता है, ना वो रसूलुल्लाह का हक अदा करता है, ना माँ बाप का हक अदा करता है, ना बीवी शोहर का हक अदा करते हैं, ना औलाद का हक अदा करते हैं, अब लगे हुए हैं वो इन तहकीकात के ऊपर। असल जिंदगी तो यह है कि हुकूक अदायगी के साथ आप ये रिसर्च के काम कर लें जितना कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आपको और फायदा हो जाएगा, हुकूक की अदायगी के अंदर और आसानी हो जाएगी। असल में ये है करने का काम, हुकूक की अदायगी, और दूसरे नंबर पर फिर अल्लाह की मखलूक के अंदर और गौर व फिक्र करके उससे मजीद फायदे हासिल करना। तो इस वजह से काफिरों की ये रिसर्च रिसर्च जो है ना, ये हमें मुतासर नहीं करती और ना करनी चाहिए, ठीक है? हम उनसे फायदा जरूर उठा लेते हैं अपने काम का, काम जरूर लें उनसे, फायदा जरूर उठाएं उनसे, लेकिन हम उनसे मुतासर नहीं होते कि कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं भाई। वो असल काम जो करने का था वो तो वो कर नहीं रहे हैं, ठीक है? दूसरे नंबर का काम जो है वो उन्होंने अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाई हुई है, तो ये कोई थोड़ी हमने करना है, हमने इससे कोई इम्प्रेस नहीं होना है, ठीक है? अल्लाह करे बात समझ में आई भी हो आपके, जो यहाँ जिस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम क्लास आज की रोकते हैं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।